अर्पिता ने अपना फ़ोन उठाकर जयराज को कॉल किया, मगर उसका हाथ कांप रहा था। समर्थ ने उसके कांपते हुए हाथ को देखकर एक गहरी सांस ली और बोला, अर्पिता अपना फ़ोन रखिए। अर्पिता ने समर्थ की बात नहीं सुनी। वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं, समर्थ ने कहा। इतना बोलकर समर्थ अर्पिता के करीब आने लगा। अर्पिता ने अपना मुंह घुमाते हुए कहा, उन्हें हमसे बात करनी ही होगी, वो हमें इस तरह से डिवोर्स नहीं दे सकते। मासा की तबीयत पहले ही खराब है, अभिमन्यु भाई सा यहाँ नहीं है, हम कैसे ये सब कुछ हैंडल करेंगे? और अगर मासा को पता चला तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम जयराज जी से माफ़ी मांग लेंगे। इतना बोलकर अर्पिता ने दोबारा नंबर डायल किया। बेल बज रही थी लेकिन जयराज उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। तीसरी बार नंबर डायल करने पर जयराज ने कॉल उठाते हुए कहा, क्या बात है, सुबह सुबह क्यों मेरा मूड खराब करने के लिए कॉल कर रही हो? अर्पिता ने जयराज की आवाज़ और उसके शब्द सुनकर बिल्कुल परेशान हो गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, जयराज जी ये सब क्या है, आपने हमें डिवोर्स पेपर भेजे हैं? हाँ भेजे हैं, अब हम इस बेकार के रिश्ते में रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जयराज ने कहा। जयराज की ये बात सुनकर अर्पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं जयराज जी, हमारी शादी हुई है और आप इस तरह हमारी शादी को ख़त्म नहीं कर सकते। ओ रियली, तो फिर कैसे ख़त्म करना है बताओ मुझे? वैसे भी मैं उस औरत के साथ क्यों रहूं जो मेरे ख़ानदान को एक वारिस तक नहीं दे सकती? इतने दिन तो झेल लिया मैंने तुम्हें, पर अब और नहीं झेल सकता। वैसे भी तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि हमें हमारे परिवार का वारिस बहुत जल्द मिलने वाला है, जयराज ने कहा। नहीं नहीं जयराज जी, प्लीज़ ऐसा मत करिए, अर्पिता ने कहा। जयराज ने उसकी पूरी बात सुनी भी नहीं और तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, चुपचाप से डिवोर्स पेपर पर साइन करो और साइन करके उन्हें मेरे पास भिजवाओ, और अब दोबारा मुझे फ़ोन करके अगर परेशान किया तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। जयराज जी, जयराज जी, अर्पिता फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली। इतना बोलकर अर्पिता तेज़ आवाज़ में चीखी। उसके दिमाग में जयराज की बातें घूम रही थी। तभी अर्पिता का फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उन डाइवोर्स पेपर्स की तरफ देखने लगी। उसके आंसुओं को देखकर समर्थ को जयराज पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अर्पिता का सर चकराया और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि समर्थ जल्दी से उसके करीब आया। उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसके सर को पकड़ते हुए कहा, अर्पिता आराम से। अर्पिता को चक्कर आ रहा था। समर्थ ने जल्दी से अर्पिता को बेड पर बिठाया, पानी का गिलास उठाकर उसे पानी पिलाते हुए बोला, रिलैक्स, आप ऐसा बिहेव मत करिए, कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है, तुम इस बेवजह की शादी से आज़ाद हो जाओगी। मुझे नहीं लगता उसे जयराज जैसे कमीने आदमी को डिवोर्स देने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अर्पिता ने समर्थ की बात सुनकर उसका हाथ अपने हाथ पर से हटाते हुए कहा, इतना आसान लगता है आपको ये सब? आपको तो ये बात बोलने में एक पल भी नहीं लगा, लेकिन आप नहीं जानते, जब से हमारी शादी हुई हम जयराज के साथ थे। वो चाहे जैसे भी हों लेकिन हम तो उनके जैसे नहीं हैं ना, इसलिए हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा उन्हें डिवोर्स दे पाना। समर्थ ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोला, कम ऑन अर्पिता, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप इस शादी में कभी भी खुश नहीं थी, उसके बावजूद भी आप ये बात बोल रही हैं, सीरियसली? अर्पिता चुप हो गई। वो हमें डिवोर्स देना चाहते हैं, अगर हमने उन्हें डिवोर्स दे दिया तो हम क्या करेंगे? मासा और भाईसा के साथ हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते ना, उसने कहा। समर्थ उसके पास आया और अर्पिता के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अर्पिता हम पहले भी आपसे ये बात बोल चुके हैं और आज भी बोलते हैं, हम कल भी आपसे प्यार करते थे और आज भी आपसे ही प्यार करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे, और आप पता नहीं क्यों हमारी ये बात सुनना नहीं चाहती। प्लीज़ एक बार हमारी बात समझिए, जयराज आपके लिए कभी भी सही नहीं था, हम भी ये बात जानते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ मासा की वजह से ही उनसे शादी की थी। हमने शादी से पहले जब आपको प्रपोज़ किया था तभी हमने आपसे ये बात कह दी थी कि हम मरते दम तक सिर्फ आपको ही प्यार करेंगे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि इस डिवोर्स के बाद आप अकेली हो जाएंगी? हम हैं आपके साथ। इतना बोलकर समर्थ ने अर्पिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अर्पिता के करीब जाकर कहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इतने दिन किसके साथ थीं और कैसे थीं, बट आई प्रॉमिस जब आप हमारे साथ रहेंगी तो हम आपकी लाइफ की हर खुशी देंगे, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अर्पिता, अगर आप कहेंगी तो हम मासा और अभिमन्यु दोनों से बात कर लेंगे। प्लीज़ आप हमारी बात समझिए और हमारे प्यार को एक बार एक्सेप्ट करके तो देखिए। अर्पिता समर्थ की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर थे, उन्हें देखकर अर्पिता की आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। तभी समर्थ ने अर्पिता के करीब आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसका सिर अपने कंधे की तरफ झुका लिया। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अर्पिता, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज आप भी एक बार को सारी चीजें भूल जाइए और सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए, क्योंकि हम ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। समर्थ अर्पिता को गले लगाए हुए था और अर्पिता भी समर्थ की बाहों में अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। समर्थ ये सारी बातें धीमी आवाज में अर्पिता को कंफर्ट करते हुए बोल रहा था। अर्पिता उसकी बातें सुनकर शांत हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकलना भी बंद हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से अर्पिता को कुछ याद आया और वो समर्थ से दूर हटी। उसने खुद को समर्थ से दूर किया और उन डाइवोर्स पेपर्स को साइड में रखते हुए कहा, समर्थ आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम आपके लिए नहीं बने हैं, इसीलिए प्लीज आप बेकार की बातें बंद करिए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम नहीं करते आपसे प्यार, आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते। समर्थ अर्पिता की तरफ देख रहा था, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। समर्थ उठकर खड़ा हुआ, उसने अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और अर्पिता इस तरह झटके से उसके पास आ गई। समर्थ ने जब उसे अपने करीब खींचा तो वो लड़खड़ा गई। समर्थ ने उसे संभाला और अपने बिल्कुल करीब खींचते हुए कहा, अच्छा अगर आप हमसे प्यार नहीं करती तो ये बात आप हमारी आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं बोलती। इतना बोलकर समर्थ उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। अर्पिता एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गई और कुछ नहीं बोल पाई। हमेशा की तरह आज भी उसकी आंखों में देखकर वो झूठ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो भी समर्थ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बस वो हिम्मत नहीं दिखा पाई उसे एक्सेप्ट करने की। और आज भी नहीं है वो हिम्मत उसके अंदर, जबकि समर्थ हमेशा ही इसी तरह उसके साथ खड़ा रहा था। हर सिचुएशन में उसने अभिमन्यु और अर्पिता का साथ दिया था सेल्फलेसली, बदले में बिना कुछ चाहे। यहां तक कि अर्पिता की शादी किसी और से हो जाने के बाद भी वो उसे एक तरफा प्यार करता रहा और किसी भी लड़की की तरफ उसने आंख उठाकर नहीं देखा। इप्सिता सीधे उसी लोकेशन पर पहुंची। वो अभिमन्यु से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अपनी नजर घुमाई। उसे वहां पर कहीं भी अभिमन्यु नजर नहीं आ रहा था। इप्सिता अंदर आई, उसने अभिमन्यु को चारों तरफ देखते हुए कहा, ये अभिमन्यु अभी तक आए क्यों नहीं है, हमसे मिलने के लिए तो इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, तो फिर अभी तक यहाँ पहुंचे क्यों नहीं, क्या अब हमें उनका यहाँ पर वेट करना पड़ेगा।
इप्सिता इतना बोलकर रेस्टोरेंट के अंदर आई। वो एक चेयर पर बैठने ही जा रही थी कि तभी उसे देखकर कुछ लोग उसके पास आए। इप्सिता मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन ऑफ यू, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हैं मैम, एक सेल्फी प्लीज, उन्होंने कहा। या श्योर, इप्सिता ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। इप्सिता उनके साथ खड़ी हो गई। वो लोग इप्सिता के साथ अपनी फोटो खिंचवाने लगे। तभी उनमें से एक लड़की इप्सिता के पास आई। मैम, मैंने आपकी मॉडलिंग सेशन को देखा है, आप सच में बहुत टैलेंटेड हो, आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो, प्लीज़ मुझे कोई टिप दीजिए, एक्चुअली मैं भी मॉडलिंग में ट्राई करना चाहती हूँ, उसने कहा। इप्सिता मुस्कुराने लगी। तभी एक वेटर वहाँ पर आया। उसने उन सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ अपनी अपनी सीट पर बैठिए, मिस इप्सिता आप मेरे साथ आइए। इप्सिता हैरानी से उस वेटर की तरफ देखने लगी, चुपचाप उसके पीछे पीछे गई। वेटर इप्सिता को रेस्टोरेंट के एक लग्जरी प्राइवेट रूम के अंदर लेकर गया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, इप्सिता ने कहा। प्लीज़ मैम अंदर चलिए, आपको खुद पता चल जाएगा, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। टू बी कंटिन्यूड।